ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश हित में लाए जा रहे इस विधेयक का देश के मुसलमान और सभी लोग समर्थन करेंगे।
मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं, बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा।
विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन को ऐतिहासिक बताया।
आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है, ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995 में 2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब पसमानदा आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा।
वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हम इसका विरोध करेंगे।
वक्फ बिल जो जेपीसी में आया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने कुछ संशोधन दिए थे और सरकार ने एक नहीं माना। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ, तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों से लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है। संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। विधेयक को पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या 32 हो गई है। कल नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ लगभग 8 करोड़ सदस्यों और 78 लाख से अधिक पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ उपलब्ध करा रहा है। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले वित्त वर्ष में 25 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में लगभग 35% वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में सबसे अधिक वृद्धि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई है, जो लगभग 38% बढ़कर लगभग 21 गीगावाट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल से श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मेनन ने कल कोलंबो में आकाशवाणी से इस यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पास भारत के विकास का लाभ लेने के पर्याप्त अवसर हैं। म्यांमार में पिछले सप्ताह के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2719 हो गई है। 4,500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 441 लोग लापता हैं। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिंग उंग वाइंग के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपदा के बाद क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत म्यांमार को लगातार राहत सामग्री और मानवीय सहायता दे रहा है। देश भर में टोल शुल्क की दरें तत्काल प्रभाव से 4-5% तक बढ़ गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे राजमार्गों के रखरखाव और उनके विस्तार में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 178 अंक बढ़कर 76,203 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,195 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।